Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि जब हम कभी भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग सुनते हैं या फिर भजन कीर्तन करते हैं तो हमें वहाँ नींद आ जाती है, लेकिन उसी के विपरीत यदि कहीं पे बहुत लाउड स्पीकर में गीत संगीत चल रहा हो, पार्टी हो रही हो, ताम झाम हो, तो वहाँ हमें नींद नहीं आती बल्कि नींद उड़ जाती है, हम वहाँ इंजॉय करते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त था और आज के परिवेश में सचमुच ये देखा जाता है। बुजुर्ग बड़े समझदार थे, उन्होंने भी बड़ी समझदारी भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखो, नींद हमेशा फूलों की सेज पे आती है, कांटों के बिस्तर पे नहीं आती। और ये जो सत्संग है, आध्यात्मिक चर्चा है, भगवान की चर्चा है, ये हमारी आत्मा को, मन को, बुद्धि को सुकून प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। और चूंकि आत्मा बहुत थक गई है भाग भाग के, इसलिए जब कभी ऐसी चर्चा होती है तो आत्मा को सचमुच बहुत शांति मिलती है और हमें नींद आने लगती है। और वहाँ ठीक इसके विपरीत होता है, क्योंकि वहाँ बहुत शोर शराबा है, कांटों की सेज की तरह है, इसलिए नींद उड़ जाती है और उड़ी ही रहती है, ठीक से नींद नहीं आती। ये तो जो अनुभव करता है वही जानता है। और मित्रों, सचमुच बहुत ही गुह्य बात है और अच्छी बात है कि जब कभी ऐसी सुंदर चर्चा होती है तो हम ये कहेंगे आत्मा को राहत तो मिलती है लेकिन सोए नहीं, क्योंकि जब कभी अच्छी बातें हो तो ज्ञान की बातें हमें आत्मा को बहुत ज़्यादा जागृत करने वाली भी होती हैं, प्रकाश देने वाली होती हैं। और यदि हम सो गए, शायद बहुत सारी अमूल्य निधियों से हम वंचित रह जाएंगे। इसीलिए ठीक है, आत्मा को राहत भी मिलती रहे लेकिन जागृत अवस्था में भी रहें और सचमुच ज्ञान के द्वारा अपना श्रृंगार करते हुए, एक अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाते चलें। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। ब्रता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
थैंक्स।
ये बात सच है ब्रता जी, वैसे भी शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि जब शंकर जी अमर कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, तो पार्वती जी भी सो गई थी। तो शायद अब भी ऐसा ही होता है कि यहाँ भी जब कभी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, ज्ञान की चर्चा होती है या भजन कीर्तन होता है तो वहाँ भी लोगों को नींद आ जाती है।
लेकिन शायद हमारे समाधान की चर्चा में तो लोग सोते नहीं होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो सब जागृत रहते हैं,
सब जगते रहते हैं
जी।
तो यही बात है कि जहाँ मनुष्य को सुख मिलता है तो मन शांत होने लगता है, नींद आ सकती है, परंतु नींद आने पर हम उन अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अच्छी बातें सुनते हुए अपने कान और बुद्धि को खोल कर रखना चाहिए, आगे पीछे सो सकते हैं नींद की कमी हो तो। और ये जो तामझाम है और फिल्मी गीत और ये वो तो आत्मा को जैसे काटते हैं ना, कांटे हैं वो, उसमें नींद भला कैसे आएगी। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि आत्मा की मूल स्थिति के विपरीत हैं ये सब चीजें।
लेकिन बताइए, उसमें मजा क्यों आता है? वैसे भी आप देखें तो लोग उसमें बहुत ज्यादा झूमते रहते हैं, गाते रहते हैं, तो यद्यपि आत्मा के ये विपरीत है फिर भी मजा का अनुभव क्यों होता है?
इसका कारण ये है कि आज मनुष्य की जो मेंटलिटी है वो बहुत निगेटिव है, कलयुग का प्रभाव बहुत ही तामसिक है, तो मनो की वृत्ति ही तामसिक हो गई, इसलिए तामसिक बातों को वो एंजॉय करते हैं।
कई लोग ये शिकायत करते हैं, हमारे पास फोन कॉल आते हैं तो, कि जब भी हम योग में बैठते हैं, यो तो सारे दिन हम बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हम योग अभ्यास करने के लिए बैठते हैं या फिर ज्ञान श्रवण के लिए बैठते हैं तो वैसे ही हमें नींद आ जाती है। तो है तो ये भी एक समस्या, ठीक है आत्मा को राहत मिलती है एक अच्छी बात है, लेकिन है ये भी एक समस्या, कैसे दूर हो?
इसमें उन्हें अच्छे चिंतन की ओर स्वयं को ले चलना चाहिए। योग अभ्यास करते हुए कई लोग क्या लक्ष्य रखते हैं, जैसे प्राचीन काल से एक संस्कार था मनुष्य का कि जो योग अभ्यास करेगा माना अपने मन को बिल्कुल जीरो पर ले जाएगा,
निर्संकल्प कर
देगा। ये नहीं करना है, मन में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करें। हमारे मन के सुंदर विचार हमें आनंदित कर देते हैं और फिर योग में नहीं नींद आएगी। और इसी तरह जब ईश्वरीय महावाक्य सुने तो उन्हें नोट करें, उनका रस लें, जैसे भगवान मुझसे बात कर रहा है, इस गुड फीलिंग में बैठे तो चिंतन चलता रहेगा, आत्मा उसको आनंदित, सुन सुन के आनंदित होती रहेगी तो नींद नहीं आएगी।
मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूँ कि कईयों का चिंतन चलता ही नहीं, लाख कोशिश करते हैं, एक दो तीन सेंटेंस तक जाने के बाद फिर से ठहर से जाते हैं। क्या कुछ स्थूल तरीके भी हो सकते हैं जिससे नींद उड़ाई जा सके?
चिंतन इसलिए नहीं चलता कि व्यर्थ चिंतन बहुत चलता है, तो व्यर्थ चिंतन में ब्रेन की सारी शक्तियां यूज हो जाती हैं, बचती ही नहीं अच्छे चिंतन के लिए। और व्यर्थ चिंतन से माइंड बहुत निगेटिव भी हो जाता है, तो पॉजिटिविटी की तरफ सोचता ही नहीं है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग मुख में काली मिर्च लौंग रख लेते हैं, कई लोग पानी रख लेते हैं बीच बीच में पी लेते हैं, अकेले बैठे हैं तो लोग आजकल के अमृत का पान कर लेते हैं, चाय तो थोड़ी वो पी लेते हैं नींद खत्म हो जाए, कोई फ्रेश हो लेते हैं अच्छी तरह, भाई नींद आने लगी है दो मिनट बाहर घूम के आ जाएं, ऐसा भी कर लेते हैं, कोई मिश्री मुख में डाल लेते हैं, तो कुछ क्रिया होती रहेगी अंदर तो नींद नहीं आएगी। बाकी लिखना सबसे अच्छी विधि है, जब ईश्वरीय महावाक्य सुने तब।
जी जी, क्या खड़े भी रहा जा सकता है बैठा जी?
अब देखिए तो योग में खड़ा होना तो उस टाइम संभव नहीं,
जैसे एक पैर में खड़े होकर लोग तपस्या करते थे, तो मैं भी खड़ा होकर योग कर लूं।
वो जरूरी नहीं, जिनको नींद आती है वो खड़े खड़े भी सो जाएंगे फिर, ऐसा देखा गया है। इसलिए मन को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि वो एक्टिव हो जाए। देखिये मन जब शांत होने लगता है तो उसे नींद आती है, लेकिन मन यदि आनंदित होने लगे तो उसे नींद नहीं आएगी। तो मन को हमें आनंदित स्थिति में लाना है, तो चाहे जब योग में बैठना है कुछ ईश्वरीय महावाक्यों की स्टडी करके बैठें, तो उससे भी मन अच्छे विचार करने लगेगा। जिनके मन में सुंदर विचार नहीं चलते उनको स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट हैं हम सब, स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है, तो जितनी उस स्टडी को हम आगे बढ़ाएंगे वो हमारी चिंतन में समाने लगेगी।
बिल्कुल। एक ऐसे ही सत्संग में एक भाई लगातार सो जाया करते थे बैठा जी, तो कुछ उनके साथियों ने कहा कि तुम जैसे ही सत्संग में बैठते हो वैसे ही सो जाते हो। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी है कि जब शंकर जी ने अमर कथा सुनाई तो पार्वती सो गई थी और कबूतर कथा सुन रहा था। सच्ची पार्वती तो मैं हूँ, आप सब कबूतर हैं। तो कई बार व्यक्ति अपने आप को ऐसे संतुष्ट और खुश भी कर लेता है, लेकिन जागृत हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। कथा जी, पहला मेल हमारे पास आया है आसिफ अली जी का मुजफ्फरनगर से। ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम धर्म से संबंधित हूँ, आसिफ अली मेरा नाम है, और मुझे आपके केंद्र में जाने से बहुत शांति मिली। मेरा प्रश्न ये है कि क्या अन्य धर्म के लोग भी आपके यहाँ आ सकते हैं, राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं, और क्या वहाँ आने के बाद धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात तो नहीं की जाती है?
आसिफ जी, मैं आपको एक ये सहज सी बात बता दूं कि हमारे यहाँ टोटल स्पिरिचुअलिटी है, जिसको आप रूहानियत कहते हैं। हम सबको रूहानियत में स्थित करना चाहते हैं। आज हो क्या गया है कि सभी देह अभिमान में जी रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस की फीलिंग को लेकर जीवन चला रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें सोल कॉन्शियस बनाना है। तुम रूह हो, इस रूहानी स्थिति में उनको स्थित कराना है। इसलिए यहाँ धर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी मनुष्यों के अंदर रूहें हैं, और रूह स्वयं को पहचान ले कि मैं चेतन हूँ और यहाँ हूँ और यहाँ बैठकर मैं देह को चला रही हूँ, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने विज्ञान के आधार पर, मेडिकल साइंस के आधार पर आत्मा को बिल्कुल जैसे नेग्लेक्ट किया हुआ है कि ब्रेन ही सब कुछ करता है, और ब्रेन जब डेड हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो मनुष्य की मृत्यु होती है। ये कुछ गलत मान्यताएं ऐसी रही जिन्होंने मनुष्य को बॉडी कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ाया बहुत। कई युवक आके इस तरह की बहस करते हैं, हम उनसे पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, आखिर चुप हो जाते हैं कि भाई ब्रेन तो डेड मनुष्य के पास भी है, फिर कहते हैं उसके सब केमिकल्स नष्ट हो गए, पर क्यों हो गए भाई, वो इनएक्टिव क्यों हो गया है, कहा ब्लड का चलना बंद हो गया, क्यों हो गया? तो उसमें जो चेतन सत्ता है वास्तव में वो मैं हूँ, और मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, हम सबको इस तरफ ले जाते हैं, ताकि बॉडी कॉन्शियसनेस से जो भौतिकवाद संसार में बढ़ा है, अब रूहानियत से अध्यात्मवाद बढ़े। अध्यात्मवाद बढ़ने से संसार में जो एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा, उससे मनुष्य पुनः सुखी होगा, पवित्र होगा, पाक होगा। तो हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है, और धर्म परिवर्तन की तो बात ही नहीं, हम तो हर एक को अब उसके मूल धर्म पर ले चलते हैं, आत्मा का मूल धर्म, शांति और पवित्रता है। तो रूह यदि अपनी रूहानियत में स्थित हो जाती है तो वो पवित्रता और शांति को अनुभव करती है। साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं सभी धर्म वालों को कहता हूँ, हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, संसार में हमारे कितने देशों में सेवा केंद्र हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी हैं, अनेक मुस्लिम लोग भी हमारे यहाँ आते हैं और बहुत लाइक करते हैं हमारे इन सिद्धांतों को, हमारी फिलोसॉफी को कि परमात्मा निराकार है, वो कोई देहधारी नहीं है, ये देवी देवता सब उसकी रचना हैं, दे मे बी ग्रेट सोल्स बट नॉट गॉड। तो ये सब कंसेप्शन सबको बहुत पसंद आते हैं। तो जो मार्ग श्रेष्ठ होता है उस पर सभी चलना चाहते हैं। मैं एक सुंदर बात ये सबको कहता हूँ कि अगर आप राजयोग का अभ्यास करते हैं, राजयोग माना अपने सुप्रीम रूह से जुड़ते हैं, रूहानी फादर से जुड़ते हैं, तो उसकी शक्ति, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी पवित्रता आपके अंदर आती है, आपकी इनर पावर्स बढ़ती हैं और फिर आप ये पाएंगे कि आपकी कुरान शरीफ जो कुछ कह रही है, जो मनुष्यों के जीवन में नहीं है, राजयोग के अभ्यास करने से उसको जीवन में अपनाना बिल्कुल सरल हो गया। तो अनेक मुस्लिम लोग यहाँ आए और वो हमें कहते हैं कि सच्चे मुस्लिम तो अब हम बने हैं, पाक हो गए, हमारे विचार शुद्ध हो गए, अब हम किसी को दुख नहीं देते हैं, अब हम सब पे रहम करते हैं, सबके कल्याण की सोचते हैं, हमारे चित्त में अहिंसक वृत्तियाँ जागृत हो गई हैं। तो आसिफ जी को मैं कहूँगा आप यहाँ आइए, मोस्ट वेलकम है, बहुत सारे मुस्लिम भाई बहने हमारे यहाँ आते हैं, आपको मुस्लिम ही रहना है और राजयोग सीखकर अपने पथ को और सुगम बनाना है।
बिल्कुल, कई बार माता जी इस बात में ऐसा भी हो जाता है कि धर्म आड़े आने लगता है, जैसे हमारी इच्छा हुई, अब जैसे आसिफ जी ने बहुत शांति का और अच्छा अनुभव किया, अब जब वो आना शुरू करते हैं तो धर्म विशेष के लोग ये कहना शुरू करते हैं कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वो जगह अच्छी नहीं है, अपने धर्म को तुम छोड़ रहे हो। तो नाना प्रकार की बातें यहाँ सुनने को मिलती है, ना केवल धर्म की बात है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, कोई कहीं भी जाता है तो ये बातें आती हैं। तो यहाँ जब ऐसे आए और इस प्रकार की बातें सुनने को मिले तो फिर कैसे कन्विंस करें सामने वाले को?
जब वो ज्ञान ले लेंगे तो ये ज्ञान अपने में ही स्वयं में कितना सुंदर प्रकाश है
जी,
कि दूसरों को हमें कन्विंस करना आ जाता है। हमारे पास अभी बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ था, आज ही वो लोग जा रहे हैं, कुछ गए हैं, कई सिख धर्म के लोग थे, तो मेरे से ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि भाई देखो आपका सब कुछ तो अच्छा है पर हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं तो क्या करें हम? मैंने कहा यही तो हम कह रहे हैं कि अब गुरु ग्रंथ साहब की मान लो, जो वो कह रहे हैं उन पर चलना है। अब हम भी जब गुरुद्वारों में जाते हैं और पाठ चलता है, बड़ा आनंद आता है, सुंदर चीज है, रूह को राहत मिलती है, परंतु उसको यदि हम अपने जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन कितना परमानंदित हो जाएगा। तो बस आप देखेंगे जब आप राजयोग सीखेंगे तो यहाँ राजयोग के बल से जो कुछ गुरु ग्रंथ साहब में कहा जा रहा है वो आप अपने जीवन में अपनाना इजी महसूस करेंगे, पवित्र बन जाएंगे, तब आपकी स्थिति आपके धर्म को बहुत बल देगी। इसलिए ये राजयोग स्पिरिचुअलिटी सभी धर्मों के लिए है और सभी धर्मों के लोग यहाँ आकर इसका संपूर्ण लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, हर धर्म का अनुयायी अपने परम पिता से अवश्य मिलना चाहता है। मुस्लिम चाहते हैं हम अल्लाह से एक बार मिल लें, सिख भी चाहते हैं जो परम सदगुरु है उससे एक बार मिल लें, जिनके लिए सब गुरुओं ने इशारा किया है। तो यहाँ वो प्रभु मिलन, अल्लाह से मिलन, गॉड से मिलन सहज होता है क्योंकि उसका मार्ग पता चल जाता है।
ब्रदर जी, कईयों का एक वो होता है विचार कि अब हम यहाँ आए तो क्या वो सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी? मान लीजिए अब मैं नमाज पढ़ता हूँ 5 बार, या फिर मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, वहाँ जा कर के मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ता हूँ, करता हूँ, या फिर मैं सुनता हूँ, या फिर मैं हम उपवास, या बहुत सारी मान्यताएं सभी धर्मों में हैं, तो क्या वो सब चीज़ें हमें फिर यहाँ आने के बाद छोड़नी पड़ेंगी, या वो सब करते हुए भी हम ये राज्यों कर
नहीं,
सकते
वो
हैं?
सब किया जा सकता है, दोनों चीज़ें। देखिए मैं कल किसी को यही बताया था कि आपके बच्चे ने हाई स्कूल कर लिया
जी,
अब वो 11वीं में गया, उसने 12वीं कर ली, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि उसने हाई स्कूल छोड़ दिया, वो तो उसके पास है ही, पर आप ये कहेंगे वो अगली क्लासेज में चला गया। धर्म में भक्ति के ये अलग अलग स्टेप्स हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य के ये भक्ति के, इबादत के और ये बहुत सारे जो स्थूल क्रियाएं हैं, इनसे एक ऊंची चीज उसे मिलती है। बाकी जो अपने अपने धर्मों में जिस जिस रस्म को अदा कर रहा है उसको वो अदा करते ही रहना चाहिए, और मैं कहूँगा सच्चे मन से करते रहना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो सुब्रत जी, फिर कैसे इसे बैलेंस में लाएं? क्या हमें डेली यहाँ आना होगा, या एक बार हमने समझ लिया फिर अपने स्थानों पर रहते हुए अपने धर्म को मानते हुए इस चीज़ को हम कर सकते हैं? इस चीज़ को कैसे
एक बार हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें और फिर हम अपने घर पर रहकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान एक ऐसा विशाल भंडार है, जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसको इच्छा होगी मैं और करूं, मैं और प्राप्त करूं, मैं और गुह्य रहस्यों को जानूं। फिर जितना जो जानना चाहे उतना अध्ययनरत रहे।
बिल्कुल। क्या प्रताप जी, कुछ ऐसे ही हैं एग्जाम्पल्स कुछ की कुछ मुस्लिम कंट्रीज के भाई बहने भी यहाँ आए, और जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे समर्पित भाव से रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं? क्या कुछ ऐसे क्रिश्चियन भाई बहने सीख लिया?
बहुत लोग हैं हमारे यहाँ, मुस्लिम बहने भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को इस कार्य में अर्पित किया हुआ है, और उनके सभी बाकायदे परिवार वालों ने, समाज वालों ने भी स्वीकार किया कि एक बहुत सुंदर कार्य है ये, खुदा का कार्य है ये, नेक कार्य है, इसमें जीवन लगाना उन लोगों के जीवन से अच्छा है जो व्यर्थ में अपना जीवन गंवा रहे हैं। और क्रिश्चियंस तो बहुत, कन्याएं भी और पुरुष भी हमारे यहाँ अपने जीवन को डेडिकेट कर चुके हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, उन्होंने भगवान पर अपने जीवन को डेडिकेट किया, अल्लाह पे किया है, किसी मनुष्य पे नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं, स्वयं सुप्रीम पर, इसलिए वो बहुत संतुष्ट हैं।
बिल्कुल। तो जी, कई बार एक जैसे एक ग्रुप का आना हुआ था, तो वो एक प्रश्न पूछ रहे थे कि यहाँ ठीक है सभी बातें तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब कभी एक परमात्मा के नाम के साथ जब आप शिव शब्द जोड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो संप्रदाय है वो है। तो क्या परमात्मा को कुछ ऐसा नाम देना ठीक है? क्योंकि उसे लाइट के रूप में तो सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन जब एक शिव नाम आ जाता है तो शायद अलग अलग धर्म के लोग थोड़े थोड़े जैसे किनारे हो जाते हैं।
नहीं, ये तो ठीक है। देखिए, ये तो भाषा भेद है, क्योंकि हिंदू धर्म से उसकी शुरुआत हुई है
जी।
तो हिंदू धर्म में जो एक प्रसिद्ध नाम है कल्याणकारी होने के कारण उसको शिव कहा जाता है, वो नाम प्रचलित हो गया। बाकी अपनी अपनी लैंग्वेज में जिस धर्म में जो नाम उस सुप्रीम को दिया गया है वो देना ही चाहिए।
बिल्कुल। अच्छा प्रति जी, एक चीज़ और, आजकल यदि देखा जाए समाज में तो धार्मिक कट्टरता बहुत बढ़ती चली जा रही है कि भाई हमारे धर्म वाले हमारे धर्म में ही रहें, दूसरे धर्मों में ना जाएं, या हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। तो यहाँ एक संघर्ष की स्थिति भी आ जाती है, कई लोग उसे घर वापसी का नाम देते हैं कि जो चले गए हैं वो वापस आ जाएं। तो यहाँ एक समाज में द्वंद या टकराव की स्थिति पैदा होती है। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज क्या सामाजिक और ये धार्मिक सद्भाव के लिए कुछ विशेष प्रयास कर रहे हैं?
देखिए, धर्म जिसको जो प्रिय लगता है वो उसको अपना लेता है, और धर्म तो एक शांति का मार्ग है और तो कुछ है नहीं। धर्म मनुष्य के विचारों को पवित्र रखता है। देखिए, धर्म आदिकाल से मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। धर्म कहीं ना कहीं मनुष्य को रोकता है, ये नहीं, धर्म कहीं ना कहीं मनुष्य को गाइड करता है। इसलिए हर धर्म अच्छा ही था। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि सभी को अपने मूल धर्म की याद दिला रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सभी मूल धर्म में रूहें हैं, आत्माएं हैं और पवित्र हैं। हम इसकी याद दिलाना चाहते हैं, दिला रहे हैं। तो अगर उस धर्म में सभी स्थित हो जाते हैं तो पुनः धर्म को बल मिल जाएगा, और ये जो धर्म परिवर्तन का खेल चलता है इसकी जरूरत नहीं रहेगी। मनुष्य जहाँ है, जिस धर्म में है, उसी धर्म में वो बहुत सुखी हो जाएगा।
बिल्कुल, मतलब मूल धर्म की बात है कि मूल धर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जाए, क्योंकि शायद सभी लोग चाहते ही यही है कि शांति हो, सुकून हो, आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो, विकास हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा तो और कोई चाहता नहीं है, और ये मिल जाए तो शायद सब कुछ होगा। लेकिन धर्म के नाम पे शायद कई बार ये जो एक द्वंद देखने में आता है ये दूर
ये हो तो सकता। क्या है, धर्म मनुष्य को सुख देने के लिए है, और कोई किसी धर्म में दुखी है और दूसरे धर्म में जाके सुखी हो गया तो ओके भाई, सुखी रहो।
मतलब सुख हो, शांति हो, कम से कम जीवन में आनंद तो संपूर्ण रूप से प्राप्त करें ही। प्रताप जी, हमेशा से एक बात कहा जाता रहा है कि धार्मिक सद्भाव हो, लेकिन ये धार्मिक सद्भाव कैसे संभव है? क्योंकि बातें तो होती हैं लेकिन ये सद्भावना वैसे भी दिखाई नहीं देती। आपको मूल रूप से क्या लगता है, कौन सी बात सभी लोग समझ जाएं जिससे कि ये एक धार्मिक एकता और सद्भाव।
देखिए वही हुआ है कि कुछ लोग हर धर्म में कुछ कट्टर लोग होते ही हैं जो दूसरे धर्म की ग्लानी करते हैं। अभी जब किसी धर्म की ग्लानी किया जाता है तो उसके लोग जरा हर्ट होते हैं और वहाँ उग्रता और हिंसा की भावना पैदा होती है। लोग अगर ये बात छोड़ दें, सब धर्मों को सम्मान दें, सब धर्मों के महत्व को समझ लें, तुम्हारा भी धर्म श्रेष्ठ है, हमारा भी धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए सबसे सुंदर बात रहेगी सभी इस फीलिंग में आ जाएं कि हम आत्माएं हैं, हम सब एक की संतान हैं, हम एक की संतान हैं, हम एक हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, बीज एक, तना एक, अब ये डालियां हैं, ये विभिन्न धर्म इस कल्प वृक्ष की डालियां हैं, लेकिन डालियां एक पेड़ तो नहीं है ना, सारी डालियां मिलकर एक पेड़ बन रहा है। तो इस संसार रूपी कल्प वृक्ष की ये शोभा है विभिन्न धर्म। कोई कहे ये सभी समाप्त हो जाएं, एक ही हो जाए, लोगों ने पहले किया था, ये सब संभव नहीं है। एक पेड़ बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा हो वो कैसा लगता है, और एक पेड़ की टहनियाँ डालियाँ उसकी ब्यूटी को बढ़ा रही हों और उस पर फिर फूल लगते हों, फल लगते हों, कितना सुंदर लगता है। तो धर्मों में ये वैरायटी जो चीज़ है, ये इसकी सुंदरता है, इसको हमें स्वीकार करना ही होगा। लेकिन धर्म की मूल चीज़ को यदि हम पकड़े रखें, स्नेह, सम्मान, अपनापन, एक दूसरे से दया भाव, अहिंसा, परस्पर सहयोग और सम्मान, तो सब धर्म बड़े आनंद पूर्वक जिएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, और इसी चीज की शायद आवश्यकता है भी कि आपस में एकता हो, समानता हो, सद्भाव हो, और राष्ट्र का विकास भी संभवतः इसी से संभव हो पाएगा। अदरवाइज आपस में ही उलझते रहते हैं तो संसार को हंसने वाली बात हो जाती है कि आपस में ही द्वंद कर रहे हैं। एक मूल बात और जानना चाहूंगा ब्रदर जी, चूंकि धर्म की हमारी बात हो रही है, कई लोग धर्म और अध्यात्म को पृथक नहीं कर पाते हैं, और ये मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि धर्म और अध्यात्म को समझें। और ब्रह्मा कुमारीज हमेशा, जैसा आप भी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज अध्यात्म की बात करती हैं, तो कैसे इसे अलग अलग समझा जाए और अध्यात्म कितना आवश्यक है जीवन के लिए?
देखिए अध्यात्म है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, यानी रूह का ज्ञान, रूहानी फादर का ज्ञान, और उसमें स्थित होना। और आत्मा की जो मूल सात क्वालिटीज हैं, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, इन चीजों को जीवन में अपनाना, ये है अध्यात्म। और धर्म, धर्म ये बाह्य स्वरूप है जो हम दिखाते हैं, भाई मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दी, चर्च बना दी, वहाँ लोग जा रहे हैं, अपनी अपनी आराधना कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन हो रहा है, भागवत कथा, गीता कथा चल रही है। तो कथाएं चलना, सुनना, ये धर्म, और उन्हें जीवन में धारण करना, वो अध्यात्म है। गीता की कथाएं सुनना, उसका पाठ सुनना धर्म, लेकिन गीता को जीवन में अपनाना अध्यात्म है।
बहुत गहरी बात आपने कह दी भ्राता जी, और शायद इसीलिए अध्यात्म की ज्यादा आवश्यकता है। और लगता ये है कि हम धर्म में ज्यादा उलझ गए हैं, बाहरी क्रिया कर्मों में ज्यादा उलझ गए हैं, इसीलिए लोग थोड़े से अब अरुचि भी लेने लगते हैं कि इन सब चीजों में कुछ नहीं है, अध्यात्म में सब कुछ सार समाया हुआ है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी, चूंकि धर्म और अध्यात्म हमारे जीवन का अंग है, इस पर प्रकाश देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों अंतिम बात सचमुच एक एसेंस के रूप में निकल के आ गई कि धर्म तो अलग अलग भले हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि माइकल जैक्सन या माइका लाल जयकिशन दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि अंदर खून का रंग तो लाल ही है, हमारे अंदर जो हड्डियों की संख्या है एक ही है, या फिर आँखें, नाक, कान भगवान ने जो हमें बना के दिए हैं वो एक जैसे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। मूल चीज़ तो सचमुच अध्यात्म की ही है, जिसकी हम सबको आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, और उस सर्वशक्तिवान के साथ अपना संबंध चाहिए। और आपस में यदि समाज में देखें तो भाईचारा, स्नेह, इन सब चीज़ों की सभी को आवश्यकता है। तो क्यों ना बाहरी स्वरूप को छोड़ करके हम अंदर के स्वरूप पे ज़्यादा ध्यान दें, जिसकी मुझे भी आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम बाहरी चीज़ों को लेकर के चलेंगे तब तक शायद हम इन आंतरिक चीज़ों को अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हम गाते आए हैं ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो ये भाई भाई का नाता वास्तव में रूह का नाता है। अब उस रूह तक पहुँचें, उस रूहानियत को अपने जीवन में धारण करें, इसकी भी आवश्यकता है। कुछ सुंदर पंक्ति किसी ने कही थी, उसे मैं अंत करना चाहूंगा आज, कि किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमां में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। सचमुच इस इंसानियत को देखने ढूंढने की आवश्यकता है और इंसानियत के साथ आपस में प्रेम से रहने की आवश्यकता है। उम्मीद है इस विषय पे जरूर आप विचार करेंगे, ताकि हम अपने देश को, अपने समाज को सचमुच प्रेम की गंगा से, प्रेम के पुष्पों से परिपूर्ण कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।